मेदे की ब्लीडिंग ये बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि किसी के भी साथ पेश आ सकता है कुछ भी खाने से। जैसे कि आलिया ने जो एक खबर दी थी कि ये दवाइयों के खाने से भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ठीक है डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी हैं लेकिन हम किस अंदाज़ से खा रहे हैं, किस ग़िज़ा के साथ खा रहे हैं, कभी कभी जो है गर्मी या शिद्दत की कोई भी हालत ऐसी पेश आ जाए उससे भी हो सकती है। किस तरह की हालतों के तहत मैदे की ब्लीडिंग पेश आ सकती है ये जवाब देंगे डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और
वालेकुम
बहुत
सलाम,
बहुत खुश आमदीद,
बहुत
और
शुक्रिया
इंशाल्लाह
आपका
कि हम नतीजे तक पहुंच जाएं और
जी।
अगर कोई
इंशाल्लाह
इसका शिकार है तो वो सीरियस होके तो इसके इलाज की तरफ आए। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैदे की ब्लीडिंग जो है ये कहते किसे हैं?
जी बिल्कुल। तो अगर हम इंसान के जिस्म पे नज़र करेंगे, जो हमारा जो मैदे का जो दस्तगज जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से भी हमारे मुंह से लेकर हमारे आंतों का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ तक उसको बोलते हैं हम जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें से मुंह से लेकर हमारे आंतों के आखिर तक कहीं पे भी किसी भी वजह से खून रिजी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं हम जो हमारे मैदे की ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसको तो फिर बहुत सारे इसके अलाइम हैं, वजूहात हैं जिनसे ये एक जवान इंसान में भी हो सकती है और फिर जो सन रसीदा अफराद होते हैं तो उनमें भी ये देखा जाता है। तो इस जो भी हमारे इस हिस्से में बिजुस जो हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स है उनसे अलग होकर जो भी हमारे मुंह से लेकर जो हमारी खाने की नाली है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं या इसोफेगस जिसको हम बोलते हैं, फिर जाके हमारे स्टोमक जो है, मैदा जो है हमारा, और उसके बाद जो हमारी आंतें स्टार्ट होती है, बुज़ुर्ग आंतें होती है और जो
छोटी
छोटी
आंत
आंतें
और बड़ी
होती है,
आंत।
तो फिर इनमें से किसी में भी किसी की वजह से भी जो खूनरेजी होती है तो उसको हम नाम देते हैं खूनरेजी का, जी आई ब्लीडिंग का।
अच्छा, आप ये बताएंगे कि ये कैसे होती है?
जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, तीन चीज़ें हैं और तीन मतलब ऐसी इसके साथ ताल्लुक़ रखती हैं कुछ चीज़ें जिनके बिना पर हम इसको डायग्नोज भी करते हैं फिर बाद में। तो सबसे पहले आपके सवाल पे मैं आ जाऊँगा कि किन क्या इसकी वजूहात क्या है, किन किन
वजूहत।
चीज़ों से ये हो जाती हैं। तो ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर्स जिनको हम बोलते हैं, तो पेप्टिक अल्सर जो है सबसे बड़ी इसकी वजूहात है। पेप्टिक अल्सर में ज़्यादातर ये होता है कि या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, जो हमारे मैदे का वो म्यूकोस होता है उसमें प्रॉब्लम होती है तो वो अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। इसके बाद जैसे आपने पहले ही प्रोग्राम में कहा कि आपने दवाइयों से होता है, जिनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स जिनको हम बोलते हैं, जो हम ज़्यादातर पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, आइबुप्रोफेन है, दूसरे दूसरे ऐसे ही चीज़ें हम जो या हेडेक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इन दवाइयों से भी हो सकती है पेप्टिक अल्सर जो है वो बन सकता है, और एक वो भी सबसे वजूहात है जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो यूजुअली इनको जो मैदे की जो खूनरेजी है इनको जो है हमारे जो मुहक्किकीन है उन्होंने दो तरह के इनको मतलब डिवाइड किया गया है। तो एक ये है कि जो ऊपरी हिस्से वाले में होता है और दूसरा कि निचले वाले हिस्से में होता है। ऊपरी हिस्से से मुराद ये कि जो हमारी आंतों तक होता है, जिसमें मैदा है हमारा, जिसमें हमारी फूड पाइप है और जिसमें हमारा मुंह भी आता है, उसको हम बोलते हैं ऊपरी हिस्सा जो है जी आई ट्रैक्ट का। और उसके बाद जो आंतों से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रैक्ट जी आई का, जो निचले वाले हिस्से में होते हैं। तो अपर यूजुअली जो है, जो अपर जी आई ब्लीडिंग होती है, ऊपर वाली ब्लीडिंग होती है, तो उसमें हमारी फूड पाइप भी इन्वॉल्व होती है, जिससे हम खाना जो हम जिस जिस से खाना हमारे मैदे तक पहुंच जाता है। तो जो हमारी रगे होती है और जो उसको सप्लाई करती है, जो हमारी फूड पाइप के इर्द गिर्द होती है, चाहे उसके जितने भी लेयर्स हैं उनमें जाके सप्लाई करती है, ब्लड होता है। तो क्या होता है कि कभी कभार आपने देखा भी होगा, कि हमारे नाजरीन ने भी देखा होगा, कभी कभार ऐसे होता है कि टांगों में भी होता है कि जो रगें होती है वो दिखना शुरू होती है, वो बहुत ही मतलब उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज
उभर के
होता है,
बाहर आ जाती
बिल्कुल
हैं।
वो रगें बाहर आती हैं।
अच्छा,
तो ऐसा ही कुछ होता है अंदर हमारे
सिर्फ
इसोफेगस में,
टांगों में या बाजुओं पे भी बाज की देखी
बाजों
है
में भी,
रगे
बाज में
उभर के
मैंने एक
बाहर?
मिसाल के लिए ये
अच्छा
कहा
अच्छा
इसका इसके साथ कोई राबता नहीं है, लेकिन अपने नाजरीन को समझाने के लिए ऐसा बोला कि जो हमारी फूड पाइप के साथ ऐसे ही रगे होती हैं तो उनमें भी यही सूरत हाल पैदा होती है। तो वो रगे जो होती हैं उनमें जो है एनलार्जमेंट पैदा होती है, वो बुजुर्ग होती है और फिर उनमें कंप्रेशन आता है तो रप्चर हो सकता है। रप्चर का ये मतलब कि उनमें छेद पैदा हो सकता है उन रगों में और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। पेप्टिक अल्सर एक वजूहत है, उसके बाद ये जो मैंने कहा कि रगे भी फट सकते हैं और उसके अलावा जो है फिर चलते हैं हमारे निचले वाले जो GI ट्रैक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा एक आंतों का हिस्सा है जिसको हम कोलॉन बोलते हैं। तो कोलॉन जो है वो हमारे छोटी आंतों का हिस्सा है, तो उसमें पॉलिप्स होने की वजह से, उसमें कैंसर होने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, चाहे वो पॉलिप है या कैंसर है, बना हुआ है कैंसर, तो इन कुछ वजूहात के बिना पे तो इनसे ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके साथ मैं ये बता दूँ जो सन रसीद अफराद हैं उनमें ज़्यादातर मेजर और माइनर ब्लीडिंग पाई जाती है। माइनर ब्लीडिंग की वजूहात उनमें ज़्यादातर हेमोरॉइड्स होती हैं और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कैंसर हो सकता है कोलॉन में, ये दो वजूहात माइनर ब्लीडिंग की हो सकती है। और जब मेजर ब्लीडिंग होती मतलब शिद्दत की खूनरेजी होती है तो उसमें ज़्यादातर होता है कि ये वेरिसीज बन जाते हैं। वेरिसीज जैसे मैंने कहा कि जो रगे होती है वो जो है सुकड़ती है, लेकिन उनका जो कुत्र होता है डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा। उनके अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से उनमें जो है छेद पैदा हो सकता है, फट सकती है, जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये इनके कुछ वजूहात है।
अच्छा, हो सकता है कि बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि खाने पीने से भी हो जाता है। अच्छा, ये दवाइयाँ जो हैं वो मेरे ख्याल से अपनी मर्जी से जो दवाइयाँ ली जाती हैं।
जी बिल्कुल।
अब यहाँ पर है ना जेलोफेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, सर में दर्द हो गया तो फौरन वो जेलोफेन ले ली। अच्छा, वो जब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगती है तो उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि उसके ज़्यादा इस्तेमाल से भी मैदे की इस टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जेलोफिन है, इसी तरह मैंने जिक्र किया था आइबुप्रोफेन का। तो जो ये फिन जैसे जो ये दवाइयाँ हैं तो इनको एनसेड्स में ही हम लाते हैं। अच्छा। तो ये भी एनसेड्स में इस्तेमाल होते हैं, तो इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जैसे आपको डॉक्टर कहें।
लेकिन हाँ, डॉक्टर के मशवरे से।
जी बिल्कुल, जो लेकिन चूंकि जो एक आम आदमी होता है उसको कुछ भी होता है वो जाके अपने फार्मेसी शॉप से उठा के लेता है मेडिकेशंस और उसको फिर इसकी जो मुज़िर असरात होते हैं आपके बदन पे उससे कोई लेना देना नहीं होता है
जब तक नहीं मालूम होता ना उसके बारे में। बहरहाल उसको पता होना चाहिए कि हर दवाई का एक साइड इफेक्ट है और ये दवाइयाँ लेने से हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम।
तो जिसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि एनसेडिस इसमें है, इसी तरीके से कुछ दूसरे भी मैं दवाइयों का जिक्र कर देता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले। हमारे एंटीकोगुलेंट्स हम जिनको बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट से मुराद वो है जो हमारे खून को जब कहीं जगह ब्लीडिंग होती है और वो जब खाते हैं तो वो ब्लीडिंग दवाइयाँ खाते हैं तो वो ब्लीडिंग को रोकती है। तो ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे हेपेरिन है, वारफेरिन है, ये ज़्यादातर फार्मेसी शॉप्स में मिलती है लेकिन आपको उस तरीके से मतलब जिस तरीके से दूसरे मेडिकेशंस मिलती हैं उस तरीके से आपको नहीं मिलती हैं। लेकिन ये भी एक मेडिकेशंस है एंटीकोएगुलेंट्स जिनको हम बोलते हैं, ये भी वजह बन सकती है ब्लीडिंग की। इसके साथ साथ दूसरी है जो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, जैसे हमारे नाज़रीन को शायद पता हो कि हमारे खून के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जैसे सफ़ेद सेल्स जिनको हम बोलते हैं WBC, इसी तरीके से लाल सेल्स हम उनको, इसी तरीके से तीसरी सेल प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स ऐसी होती है कि जब शायद आपने भी देखा होगा जब प्लेटलेट्स निकालते हैं तो वो येलो कलर का होता है। तो वो प्लेटलेट्स जो है उन प्लेटलेट्स का काम ये है कि जब खून रेजी होती है तो वो प्लेटलेट्स उस जख्म के पास आ जाते हैं, एक साथ जमा हो जाते हैं, तो एक तरीके का वो एक वहाँ पे बैरियर बनाते हैं ताकि खून रेजी से बच जाए। तो ये अल्लाह पाक ने एक मैकेनिज्म रखा है इंसान के अंदर। तो ऐसे ही कुछ ड्रग्स है जो इन जिनको हम बोलते हैं एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, जो इन प्लेटलेट्स की ज़िद काम करते हैं, जैसे एस्पिरिन है, एनसेड्स भी उसमें आते हैं और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेरोटोनिन जो हमारे ब्रेन के अंदर एक कीमियाई मादा होता है, वो तरशु मतलब सिक्रेट होता है, तो उसके ऊपर ये ड्रग्स, ये जो ड्रग्स हैं तो ये भी ब्लीडिंग के जो है मतलब वजूहात हो सकते हैं। और जैसे तीसरा वजूहात जैसे आपने कहा खाने, कुछ खाने भी ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो जैसे हमने कहा कि जो सन रसीदा अफराद हैं उनमें जो है हमारे जैसे खून के अंदर आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आयरन जो है उसका काम ये है कि ऑक्सीजन हम पीते हैं और वो हमारे दूसरे जिस्म के हिस्सों तक आयरन ले जाता है। तो ऐसे कुछ फूड्स जो होते हैं जिनकी वजह से आयरन ओवरलोड होता है, तो उनकी वजह से भी
अगर आप चाहें तो खाने के सिलसिले में एक बात करें हम थोड़ी सी, इंशाल्लाह जब वापिस आएंगे।
डॉक्टर साहब, जब मैं इस हवाले से खबरें पढ़ रही थी तो इसमें मैंने एक पैराग्राफ देखा, मैंने ये लिखा हुआ था कि मैदे में जब सूजन आ जाती है तो ये धीरे धीरे मैदा जो है कमज़ोर हो जाता है और ये बाइस बनती है इस बीमारी की। लेकिन मुझे ये सवाल पूछना है कि जो अल्सर कहा जाता है, पहले ये होता है या फिर बाद में खूनरेजी शुरू होती है या नहीं डायरेक्ट शुरू हो जाती है ये बीमारी इसमें?
जी बिल्कुल, तो पहले जो है मैदे में अल्सर होता है, अल्सर ही एक वजह बनती है खूनरेजी शुरू होने की। जो अपने सूजिश की बात की वो एक अलामत बन सकती है इसकी, तो इसकी अलामत बन सकती है, लेकिन जो अंदर का है वो अल्सर ही होगा या कोई ज़ख्म होगा दूसरा हमारे जीआई के अंदर जिसकी वजह से खूनरेजी हो सकती है।
ठीक, अच्छा आप थोड़ा सा ग़िज़ाओं का और ये ब्लीडिंग का ताल्लुक मैदे की इस पे आप बात कर रहे थे।
जी हम बोल रहे थे, हम आयरन की बात कर रहे थे क्योंकि आयरन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जिस्म के अंदर।
रसीदा अफराद के लिए तो और भी ज़्यादा, उनमें नकाहत बहुत हो जाती है।
जी बिल्कुल, क्योंकि एजिंग के साथ साथ वो कम भी हो जाता है। तो क्या होता है कि जो सिन रसीदा अफराद होते हैं उनमें आयरन जो है उसका हाजमा जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो हज़म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आयरन जो है हमारे आंतों से हज़म होता है, उसको आयरन को मतलब हजम बहुत सारी चीज़ें हजम हो जाती है आंतों से, उसमें से आयरन भी एक चीज़ है जो हमारी आंतों से हजम होता है। तो आयरन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे खून के लिए, क्योंकि हमारे खून में जो ऑक्सीजन होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे हिस्सों तक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें भी होती है कि कभी कभार आयरन जो है वो ओवरलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, ना हजम ही नहीं हो रहा है, तो आप खाए जा रहे हैं लेकिन वो हजम नहीं हो रहा है, वो भी एक वजह बन सकती है। ऐसी ऐसी चीज़ों में जैसे पालक है, दूसरे दूसरे ऐसी चीज़ें जिनमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, कुछ फ्रूट्स है, दूसरे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, तो उनमें आप देख सकते हैं कि हम कितना खा रहे हैं, तो वो भी एक वजह बन सकती है आयरन ओवरलोड या इंडाइजेशन ऑफ आयरन, वो भी एक वजह बन सकती है ब्लीडिंग की। इसी तरीके से बिस्मुथ एक और एलिमेंट है जिसको हम जानते हैं, उसको बिस्मुथ केमिस्ट्री में बोलते हैं, वो भी खानों में पाया जाता है, तो वो भी उसकी भी ओवरलोडिंग या इंडाइजेशन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कुछ खाने के साथ साथ मेडिकेशन हुए तो इनकी वजह से ये भी कुछ वजूहत बन सकते हैं।
अच्छा, अब एक आम इंसान तो ज़ाहिर तशख़ीस नहीं दे सकता है, उसको कोई मुतालिया भी नहीं है और इस मसले से दो चार हो गया है, अब वो क्या करे समझे कि हाँ भाई वो इसी तकलीफ में मुब्तला है कि नहीं?
जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम में कहा कि तीन ऐसे अनवा में या ऐसे टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है जी आई ब्लीडिंग को, उनको मैं आपके सामने रखूँगा कि एक को बोलते हैं हेमेटेमिसिस। हेमेटेमिसिस का मतलब ये है कि आपके ऊपरी हिस्सा जो है मैदे का उसमें ब्लीडिंग हो रही है और वो वोमिटिंग के साथ हो रही है, उसमें वोमिटिंग भी होती है। तो जब आप कई करेंगे या उल्टी आ जाएगी तो अगर आप उसमें खून पाएंगे,
अच्छा।
और बहुत ही रेड कलर का खून पाएंगे, मतलब उस अगर रेड कलर का खून हो इसका मतलब है ताज़ी ब्लीडिंग हुई है, और अगर कुछ ब्राउन कलर का खून हो मतलब ये है कि ब्लीडिंग हुई है, रुक गई है और वो खून जो है वो अंदर था आपके, अब वो वॉमिटिंग करके बाहर आ गया है, तो ब्राउन कलर भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है और वो वॉमिटिंग के साथ आता है, इसको बोलते हैं हम हेमेटेमिसिस। और एक चीज़ है इसको भी मेलेना बोलते हैं। मेलेना जो हमारा फुजला होता है जब आंतों से खारिज होता है तो उसका जो रंग होता है वो बहुत ही बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर होता है, स्या रंग का। तो ये होता है कि आपकी आंतों से ब्लीडिंग हुई हो, मे बी आपकी मैदे से भी ब्लीडिंग हुई हो, और वो जाके फिर मेलेना के लिए ये कहा जाता है कि 100 से लेके 250 मिलीलीटर तक का खून ज़रूरी है ताकि इसका कलर ऐसा आ जाए, आपके फुजले का कलर जो है स्याह रंग का हो जाए। तो अगर ऐसा कलर आपने पाया आपके अंदर ब्लीडिंग रुकी हुई हो, और अगर आपने खून पाया बिल्कुल रेड कलर का, इसका मतलब वो है कि आप में नहीं ब्लीडिंग हो रही है अभी भी। और दूसरा है इसमें, इसको हम बोलते हैं हेमेटोशीजिया बोलते हैं। हेमेटोशीजिया से भी ये मुराद है कि वो आपके जो निचला हिस्सा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, तो उससे ब्लीडिंग हुई है। तो यूजुअली आप वोमिटिंग के साथ आप इसको देख सकते हैं, किसी को वोमिटिंग के साथ खून आ रहा है या कि کوئی جو ہے کہ اس کے فضلے کے ساتھ مطلب خون آ رہا ہے, اس کا کلر چینج ہوا ہے, تو یہ طریقے ہیں اس کو پہچاننے کے. اس کے بعد آپ سے اس کے بعد پھر تشخیص پہ جاتے ہیں, جب یہ آپ بتائیں گے کہ مطلب ایسے ایسے بلیڈنگ ہوئی ہے, پھر جا کے ڈاکٹر تشخیص کرے گا.
تو ڈاکٹر کس طرح سے تشخیص دے گا؟ آیا الٹرا ساؤنڈ ہوگا یا وہی فضلے کو لے کے جیسے لیبارٹری میں, یا کیا مطلب مراحل کیا ہیں؟
جو اپر جی آئی کی بلیڈنگ ہوتی ہے, تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اپر جی آئی بھی اور لوور, مطلب جو ہمارا نچلے والا حصہ ہے اور اوپر والا حصہ ہے, اگر وجہ ہوگی کہ اوپر والا حصہ اس میں شامل ہے, تو یوزول انڈوسکوپی کرتے ہیں, انڈوسکوپی سے پتہ چلاتے ہیں کہ شاید کہاں زخم ہے, کیا ہے, کیا چیز ہے, تو انڈوسکوپی سے پتہ چلتا ہے اوپر والے حصے کا. اور اگر وجہ بنے گی نچلے والے حصے میں, تو اس میں کولونوسکوپی کرتے ہیں, تو دیکھتے ہیں آنتوں میں کہیں پہ پرابلم نہ ہو. تو اس میں اس یہ دو طریقے ہیں کہ جن سے تشخیص دیتے ہیں.
چار منٹ آپ کے پاس ہیں علاج کے سلسلے میں بات.
جی بالکل, علاج یوزولی کرتے, کیونکہ اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی ہے. اگر سیویئر بلیڈنگ ہوگی تو جو پیشنٹ ہے تو شاک میں بھی چلا جا سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ بھی دیکھتے ہیں. پہلے زیادہ تر کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, اگر وہ بندہ شاک میں چلا گیا ہو یا سنکوپ بولتے ہیں, اس کی جو بریدنگ ہے وہ کم ہو گئی ہو, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی جو ہوا کی جو نالی ہے اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو مطلب کھولتے ہیں,
کلیئر کرنا ہے, یعنی اس میں خون بھر گیا ہے.
جی بالکل, اس میں خون بھر سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے وومیٹنگ کی وجہ سے ہو گیا ہے, تو اس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہو گیا ہو, اس کی بریدنگ ریٹ کم ہو گئی ہو, تو اس کی جو ہوا کی جو پاتھ وے ہے, جو وہ راستہ ہے, اس کو کلیئر کرتے ہیں تاکہ